निरवस्त संजुजाम सुसादुकृत्यं विबुधा जुषापिव मा भजन दुर्जर गृह शृंखला संवृश्य तद्व प्रतिजात साधुना। न पारे हम निर्वद्ध संजुना। मैंने कल कुछ उसकी व्याख्या की थी। कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, विशेष करके पहले के श्लोकों में हम लोगों ने गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव उसको दिखलाया गया, सनातन गोस्वामी ने दिखलाया। अब यहां पर कुछ श्लोकों के माध्यम से कृष्ण का गोपियों के प्रति भाव स्नेह हृदय की भावना सबको यहां पर दिखला रहे हैं। इसलिए यहां न पा रहे हम कृष्ण स्वयं अपने मुख से करें, यह हमारा तुम्हारा जो मिलन है यह निर्वध्य है। लौकिक दृष्टि से, मात्र दृष्टि से, स्मृतियों के विचार से, पारलौकिक विचार से, सब प्रकार से निर्मल है, दोष शून्य है। मैं इसका प्रतिदान देवताओं की आयु में भी इसका प्रतिदान देकर मैं उऋण नहीं हो सकता तुम्हारे इस प्रेम से। विशेष करके तुम लोग का प्रेम हमारे प्रति एक निष्ठ है और मैं बहुनिष्ठ हूं। गोपियां अपने स्त्री, अपने पति, ससुर, घर द्वार सबके प्रति संपूर्ण रूप से अपना संबंध काट कर कृष्ण के चरणों में अर्पण किया है। गोपियों के लिए केवल कृष्ण एक ही हैं, दो नहीं है। सारा स्नेह ममता जो कुछ है वो कृष्ण के प्रति लगा हुआ है। बैठ जाओ। गोपियों ने कृष्ण के लिए सब को छोड़ दिया, किंतु कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं, जो भक्त नहीं वो लोग भी हैं, तो किसको वो छोड़ देंगे। उनकी अपनी खास प्रतिज्ञा यह है, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा हमारा भजन करता है मैं उसका उसी रूप में उसका प्रतिदान देता हूं और वैसा ही भजन करता हूं। गोपियों ने घर बार जितना संबंध है सबको काट दिया और कृष्ण में लगाया, किंतु कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो लाखों के ऋणी बन जाएंगे। यदि कृष्ण ने समस्त गोपियों को, समस्त जितने भी भक्त हैं सबको छोड़ दिया और एक श्रीमती राधिका जी के ही अनुगत हो जाए, प्रेम में लगाए, तो बाकी के ऋणी हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए यह संभव है। कृष्ण का प्रेम बहुनिष्ठ है, सबको काट करके अपने प्रेम को गोपियों में लगाना यह असंभव है उनके लिए। दूसरी बात वो कह रहे हैं, देखो तुम्हारा हमारे प्रति जो साधु कृष्ण है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के जो तुम लोगों का हमारे प्रति प्रेम है, इसका उदाहरण तुम ही लोग हो, दूसरा जगत में कोई नहीं है। विशेष करके ये श्लोक है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये गोपियां इसकी चरम सीमा है, ऐसा कोई भी आत्मसमर्पण कृष्ण के प्रति नहीं कर सका है। कृष्ण सर्वधर्मान प्रत्यज्यमान एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई प्रश्न ही नहीं है कृष्ण का जो उनके पापों को मोक्षण करेंगे, इसलिए ये सब उनके लिए संभव नहीं है। अथवा यहां पर स्वसाधु कृत्यम, स्वसाधु का दो अर्थ होता है, सु असाधु। अत्यंत साधु जो तुम्हारे कर्तव्य हैं हमारे प्रति, इसके बदले में मैं तुम्हारा ऋण कैसा, तुम्हारा कोई ऋण नहीं। सु साधु ये तो हो सकता था, किंतु यहां पर नहीं है। क्या है? सु असाधु। तो गोपियों का कृष्ण के प्रति असाधु व्यवहार क्या है? गोपियां बहुत निष्ठुर वाक्य गोप कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, बाव जगहों में धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तन सुष्ट बांब धूर्त। और ब्रह्मगीत में पहले श्लोक में क्या किताब किताब कहते हैं किसको? ठग को। आपके जैसा जगत में दूसरा कोई ठग नहीं है, ठग उनको कहा। किताब व बंधो, ठगों का बंधु मित्र कहा। क्या यही नहीं? तुम्हारे जैसा महाधूर्त इस जगत में कोई ना, तुम धूर्त शिरोमणि। श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत के एक श्लोक में वो क्या श्लोक है, तुम बहेलिए जैसे नहीं, अरे ठहर जाओ, इसके बाद का श्लोक जिम्ब ब्राहितम शब्द धाना कुलकृत मुवाद्या कृष्ण बद्धो हिरण्य दद्रसु असकृते तत् नख तीव्र। उसमें जिम्ब ब्राहितम शब्द धाना कुलिकैव रुतज्ञा कृष्ण बद्धो हिरण्य। आपके जैसा ठग जगत में कोई नहीं है। जिस प्रकार से कुलिक, कुलिक माने बहेलिया, प्राणघाती बहेलिया अपनी सुरली बांसुरी के तान से हिरणों और हिरणियों को का शिकार करता है, डंडे गाड़ दिया और उसको बड़ी ध्यान से उनकी मधुर बंसी की आवाज सुनने लगे, किंतु जमीन में गड़ा हुआ इतना हुआ है, जो ही थोड़ा सा भार पड़ा वो गिर गया, फिर जल्दी से उसके पैरों में मोच नहीं है पिछले, इसलिए उठ नहीं पाता, और डंडा लिया, डंडे से दो चार मारा, घायल कर दिया और उसे बद कर दिया। इसी तरह से आप हैं, जिम्ब ब्राहितम शब्दधान, हम जो श्रद्धा करके आपके पास आई, आपने कपटता पूर्वक बंसी बजाई और क्या किया, यहां आकर के अपने नखों से तीव्र विष दान दिया, हमारा घर परिवार सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं तुम जैसे महाधूर्त हो, तुम्हारे मन में एक बात और मुख में एक बात, घर चले जाओ, अले तो कहा स्वागतम महाभागा, आप लोगों का स्वागत है, ब्रज का मंगल है, तो ये कहने के लिए आई, आपको ब्रज में कुछ अमंगल है इसलिए हमारे पास में आई। तो ब्रज में कोई अमंगल होता तो तुम आती तो तुम्हारा चेहरा कुछ दूसरा होता, किंतु देख रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत शांत है, इसलिए ब्रज का तो कोई अमंगल नहीं है। तो ये वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई, भाई अघोर रात्रि है, घोर रात्रि, घोर रजन नेशा, घोर रात्रि, घोर जानवर यहां पर हैं, स्त्रियों का यहां रहना ठीक नहीं। कृष्ण कहा जो मैंने कब कहा था ये घोर रात्रि, मैंने तो अघोर कहा था, उसमें आ जाएगा वो क्या रजन नेशा अघोर रूपा, अघोर माने क्या घोर, मैंने कहा नहीं, मैंने तो अघोर कहा था। और यहाँ पर जानवरों के लिए मैंने कब कहा था ये घोर, वो तो अघोर मैंने कहा था। परे शांत शिष्ट जगले तुम्हारा जाना यहाँ से उचित नहीं है, मैंने तो ये कहा। तो आप किस उद्देश्य से कब क्या कहते हैं ये ठीक नहीं। मुख में एक मन में एक, तुम्हारे जो वचन है कैसे हैं, ईषत मधुर होने पर भी नारी के बध में अत्यंत अभिसंधि मूलक गरल विशेष है, पीस है। जिस प्रकार से वो बेनू का नाद मधुर, ये क्या चीज है, उनके प्राण घातक हैं, उनके प्राण को मारने के लिए वैसे बजाते हैं, ऐसे आपकी ये मधुर मुरली की तान या मधुर जो वाणी है ऐसे ही व्यास के समान है। जिस प्रकार से मधुर ध्वनि कर करके हिरणियों के चित्त को आकर्षण कर उसे मार डालते हैं, तुम्हारा यह वचन और यह ध्वनि भी वैसे ही। काश्रियं से कल्पदायत बेनुगीत सुमोहिता आर्चरित न चले त्रैह त्रैलोकम। यदि कुछ दोष है हमारे धर्म में अधर्म करने का तो ये आपका दोष है। कैसे जी, कैसे, तो इतने सुंदर मधुर और इतनी मधुर मोहन मुरली क्यों आपने बजाया। जब पशु पक्षी भी अपने धर्म में स्थिर नहीं रह सकते तो हम स्त्रियों के लिए जो बहुत कोमल हृदय के होते हैं हमारे लिए कैसे संभव है। यदि पानी है तो वो चलने वाला पानी प्रवाह वाला वो स्थिर हो जाता है, बल्कि नीचे से ऊपर आ जाता है। आकाश में बादल छा जाते हैं और सब चीजें, इसलिए और क्या कहें, आपकी और कितनी बड़ाई करें। गोपियां कह रही हैं जन्म मात्र से ही नारी का वध किया, ये आपकी आदत लगी हुई है, ऐसे कठोर और निष्ठुर तुम हो। वो बेटा मान करके तुमको स्नेह करना है या तुमने उसे पान करके उसको समाप्त ही कर दिया, इसलिए तुम्हारे जीवन का यही व्रत है। तुम महाचौर चौरामणि हो। बाल्य जीवन में घर में सबके घरों में चोरी करते थे, बचपन जबकि नंगे रहते थे, नंगे ऐसी कोई गोपियों का घर नहीं था जहां पर कि तुमने चोरी नहीं किया। और कुछ थोड़े से और जब बड़े हुए तो एक तो करेला चीता और चढ़ गया नीम के ऊपर, तो और चीता हो गया। थोड़े से बड़े होने पर कदम वृक्ष के ऊपर में गोपियों के सारे वस्त्र लेकर के चले गए। ये कैसे आप पर धर्मात्मा है, खिल्ली उड़ा रही है, देखो तो कैसा आप दूसरों की मर्यादा देने वाले हैं, धर्म धुरंधर आप हैं, कुल ललाओं के प्रति बता धर्म को हरण करने वाले हैं। और कुछ कहें, हे दुलील शेखर, दुलील माने दुष्चरित्र को कहा जा सकता, वो नहीं कह रहे। हे कितवेंद्र इत्यादि जो कहा, इसलिए तो आप लोग ये गोपियों का निष्ठ होता है, तो फिर मैं तुमसे प्रेम कैसे करूं या तुम्हारा ऋणी कैसा। किंतु कृष्ण फिर उसको संभाल करके कहते हैं कि नहीं, देखो ये वचन यद्यपि कठोर है किंतु महारस सिंधु की तरंग माला के रूप में हमारे हृदय को उद्वेलित करती रहती है। ये ब्रह्मा के कोटि कोटि स्तव स्तुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं हूं। यदि गोपियां कहें अच्छा आप अपनी सेवा दीजिए, तो कृष्ण कहे जी अच्छा अच्छा कौन सी सेवा चाहिए। यदि गोपियां कहें जी हम ये सेवा कि हम आपको चमर और पंखे से विजयन करें, ये ठीक है। कि गोपियां यदि कहें हमारे पैरों में अलता पहनाइए, ये सेवा, कौन सी श्रेष्ठ है, कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे। गोपियों को पंखा झलने में जो गोपियों ने कहा जैसे अच्छा सेवा दी, कृष्ण ने कहा जी हमारा पंखा झल दो, ये गोपियां कृष्ण को पंखा झल रही है। अच्छा हमारे पैर दबा दो, कोई गोपी कृष्ण के पैर संभाल रही है, कोई कृष्ण को स्नान करा रही है, ये श्रेष्ठ है, कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। न कि गोपियां ने कहा जी हमारे पैरों के अलते जरा वो ठीक कर दो तो इसमें प्रसन्न, कौन से में प्रसन्न होंगे। जो रसिक व्यक्ति होंगे वो समझेंगे, दूसरे नहीं इस चीज को समझेंगे। इसमें कृष्ण बहुत अधिक अपने को बेच देंगे इसके लिए। ये सब जो चीजें हैं कृष्ण सबका ऋण चुरा सकते हैं, ये कैसे संभव है। ये जो चीजें हैं राधिका जी के हृदय में महाभाव, महाभाव माने मादनाख्य भाव, इसलिए ये इस प्रकार से कर सकती हैं, इस प्रकार की सेवाएं कृष्ण से ग्रहण करती हैं। और दूसरा पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा, मैया थोड़ा सा कह देंगे दधी चोर, बंदर बंधु इत्यादि कर सकती हैं, किंतु इतना नीचे उतरकर यशोदा के लिए भी संभव नहीं है। सीता जी, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि के लिए तो एकदम असंभव है। तो वही कृष्ण करेंगे, ये बातें हमारे हृदय को उद्वेलित कर रही है। ये सब सुनने की लालसा हमारे अंदर में बनी रहती है, इसका मैं कैसे ऋण चुका सकता हूं। अतएव साधु कृत्य कृपे निष्पन्न हईबे, इसलिए मैं ऐसा साधु कृत्य करके के तुम्हारा ऋण मोचन करूंगा, ये मेरे लिए संभव पर नहीं है। सत्य ही मैं इसका निरूपण, जब तुम्हारा साधु कृत्य कैसा है मैं निरूपण नहीं कर सकता। इसी करके यहां सनातन गोस्वामी कहते हैं गोपी शब्द का अर्थ क्या है, गोपयति संरक्षयति च गोपी। कृष्ण की भगवत्ता के सार को, कृष्ण रसमय विग्रह हैं, अखिल रसामृत प्रसिमर, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद धतार का पाली, ये जो कृष्ण रस के समुद्र हैं, अखिल रसों के समुद्र हैं, इसको ये संवर्धन करने वाली गोपियां हैं, इसको रक्षा अर्थात गोपयति रक्षा करने वाली है, संवर्धन करने वाली है, इसलिए इनका नाम है गोपी। कृष्ण की भगवत्ता की भी ये रक्षा करने वाली ये और पोषण करने वाली ये गोपियां, इसलिए इनका नाम है गोपी। गोपयति क्या, गोपयति कृष्ण की भगवत्ता, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उनका कोई भी कुछ नहीं है परिचय, क्या क्या परिचय है, इच्छा। बाकी ये जब सब कुछ हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ये जगत की सृष्टि, उस जगत की सृष्टि, गोवर्धन पर्वत धारण करना, सब असुरों को, ये सब जो मुक्ति क्या है, मुक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ कृष्ण हैं, ये मुक्ति दाता नहीं क्या है रूप गोस्वामी, ये सब नारायण में भी है किंतु इसमें चरम सीमा तक है क्या, वो हतारी गत गाय, ये नारायण इत्यादि में भी है किंतु कृष्ण में ये कैसे गति है। नारायण इत्यादि भगवान का कोई भी अवतार ब्रज का परिकर के रूप में उनको ये नहीं दे सकता, किसी को मार करके प्रेम से साधन करके यदि हो तो वो दे सकते हैं, किंतु हतारी गत दायक पुतनाई उसे मार करके मातृ के समान धात्री उचित गति उन्होंने दी, ये सब संभव है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं इस सब का मैं तुम्हारे जो साधु कृत है इसका निरूपण करने में मैं समर्थ नहीं। गोप हाँ तो वो बतला रहा था, गोपयति संवर्धयति रक्षयति इति गोपी। कृष्ण की भगवत्ता को, कृष्ण के रस समुद्र को, कृष्ण की लीलाओं को ये परिवर्तित करती हैं, संरक्षण करती हैं, इसलिए इनका नाम है गोपी। गोपियों के बिना कृष्ण का अर्थात उनकी पराशक्ति के बिना संजो के उनकी कोई भी लीला संपन्न नहीं हो सकती। ये कृपा शक्ति क्या है, कृपा शक्ति फलादिनी शक्ति इत्यादि, इसके बिना कैसे काम कर सकते हैं। कृपा भी किसी पर करेंगे तो फलादिनी शक्ति और ये कृपा शक्ति समस्त शक्तियों की चूड़ामणि है, इसके बिना उनकी कोई लीला भी संपन्न नहीं हो सकती है कृष्ण की। वास्तविक में कृष्ण को विलास कराने वाली गोपियां, ये जो वचन, जो कठोर वचन जो बोला है कृष्ण के प्रति, असाधु जो शब्द का इन्होंने जो प्रयोग किया है, निष्ठु धूर्त चोर चूड़ामणि इत्यादि, ये सब वचन भंगी है। किस लिए? कृष्ण को और अधिक आनंद देकर के उन्हें विलास करने के लिए ये वचन भंगियां हैं। ये सब साधु कृत्य हमें और भी तुम लोगों के ऋणी बना रहे हैं। साधु कृत्य को आप जैसे, मैं इन बच्चनों का मैं ऋणी हूं, इसलिए उन्होंने निरुपद्रव जो पहले कहा, तुम लोगों ने जो अपने गृह श्रृंखला, पातिवत्त धर्म, धैर्य, लज्जा, लोक धर्म, परलोक धर्म, सबका क्षण मात्र में ये दुर्जर गृह श्रृंखलाएं हैं, इसको अनासक्त होकर के तो कुछ कुछ किया जा सकता है, किंतु स्वरूपतः इनका त्याग करना बड़ा भारी कठिन है। जनक इत्यादि अनासक्त होकर के घर में रह करके ही भजन किया, स्वरूपतः त्याग नहीं किया, दूसरा कोई आदर्श ऐसा नहीं। अर्जुन इत्यादि पांचों पांडव लोग भी गृह में अनासक्त होकर के, गृह में रह करके कृष्ण के प्रति प्रीति किया, इन्हें स्वर्ग का भी संपूर्ण रूप से प्रत्याग कर दिया। सम्यक खेदन कर सर्वनिरपेक्ष, ऐसा दूसरों के लिए संभव पर नहीं है, ऐसा तुम लोगों ने हमारा भजन किया है। दुर्जर विशेषण और श्रृंखल रूपक के द्वारा यह प्रतिपन्न हो रहा है कि ऐसा दुर्जर गृह श्रृंखला तोड़ना अपनी शक्ति की बात नहीं है। ये कैसे होगा? या तो भगवत कृपा हो अहेतु की, या भागवतों की ऐसी अहेतु की कृपा हो। अपने से तो एक तनिक भी संभव पर नहीं है। विश्वामित्र जैसे ऋषि हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की और अस्परा की एक नुपुर की ध्वनि पर कहां चले गए। नारद जी जैसे भक्त अपने को दिखला रहे हैं, परम मुक्त होकर के भी इस माया से बच नहीं सके। ब्रह्मा और शंकर के लिए भी बड़ा कठिन है, तो हम लोग की तो बात ही क्या। इसलिए बिना कृपा के ऐसा संभव नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ दिया है, घर से कोई संपर्क नहीं है, किंतु पैसे का मोह नहीं छोड़ पाते, यहां तक कि छिपे चोरी कुछ घर पर आ सकती है, इसलिए आकर के यदि घर वाले रोने लगे हैं तो क्या करेंगे? कुछ थोड़ा सा कुछ दे दीजिए जो हमारा ये काम हो जाए, तो छिपे चोरी हो जैसे हो उनको कुछ दे देंगे। बहुत से लोग हम सन्यासी भी देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग 100 उम्र में या 95-96 वर्ष की उम्र तक घर छोड़ करके, मठ में रह करके या मठ छोड़ करके फिर घर में भिक्षा करके और घर को भेज रहे हैं। साधारण चीज है, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, गृह की आसक्ति छोड़ना बड़ा भारी कठिन है भाई। विचार करके देखेंगे ये हमारा हृदय कितने पानी में है, वैसा भजन करना बड़ा भारी कठिन है। इसे बाहर और भीतर दोनों से स्वरूपतः और आसक्ति रहित होकर के स्वरूपतः ये संसार के समस्त आसक्तियों को दूर कर देना बड़ा भारी कठिन है। भावावस्था तक नहीं होता, स्वरूप शुद्धि होने पर कुछ कुछ थोड़ा सा रहता है तो अभी गंदा रहता है, वस्तु शुद्धि होने पर ही संपूर्ण रूप से यह धो सकता है। और गोपियां कहां हैं? कहां मदनाथ के भाव तक गोपियां माने श्रीमती राधिका जी, ऐसा जगत में कहीं नहीं देखा जाता। दूसरी बात एक और, कृष्ण इसका इसको रसास्वादन करना चाहते थे, कृष्ण लीला में तो नहीं कर सके। किस चीज को मदनाथ के भाव, राधा जी जिस भाव से कृष्ण को देख करके एकदम तन्मय हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं, ऐसा कृष्ण के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनको मदनाख्य भाव नहीं है। रस के समुद्र है यह बात ठीक है, किंतु मदनाख्य जो भाव है राधा जी का भाव, इसलिए उनसे उधार मांगा और राधा जी ने अपने भाव को दिया, अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा, इसका ऋण कैसे चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे? कृष्ण लीला में तो संभव नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी के लीला में हाँ कृष्ण कहाँ हैं, कभी समुद्र में कूद जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसे भी वो पूरी नहीं हुई, इसका ऋण कैसे चुकाएंगे? महाभाव का देकर के जो राधा जी ने दिया है, जो कहीं कहीं जगत में कहीं संभव पर नहीं है, अपने भाव को दिया, इसका ऋण कैसे चुकाएंगे कृष्ण? क्योंकि उनके पास तो मदनाख्य भाव है ही नहीं है, तो चुकाएंगे कैसे? किंबा छाया पर्यंत, अरे वो क्या बात, गृह श्रृंखला की और लोगों से जो आसक्ति है, अपने शरीर से जो आसक्ति है, भोजन में जो आसक्ति है, अपने कुत्ते में जो आसक्ति है, उसकी छाया भी काटने में समर्थ नहीं है। एक आदमी काजे वो घर बार छोड़ दिया और छोड़ करके काजे महाराज जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, किंतु कुत्ते का स्नेह नहीं जा रहा, नहीं चाहता, बस क्या करेंगे, अपने शरीर पर आसक्ति नहीं जाती, बराबरी का अपने प्रतिष्ठा से आकांक्षा, यदि जरूरत है, यदि कृष्ण ही में ऐसा प्रेम, तो गोपियां कृष्ण के प्रेम का अतिरिक्त और क्या किया? हम लोग प्रचार जा रहे हैं, सच की स्वरूप बुद्धि है, लोगों की प्रतिष्ठा भी ले रहे हैं, दूसरों को हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? प्रेम। कोई अध्यापक यदि हो संस्कृत का, वो पंचतीर्थ और सरतीर्थ या कुछ भी एकदम अंतिम सीमा, क्या पढ़ाएगा? महाप्रभु जी ने बांध दिया दोष, यदि ऐसा प्रेम हो या अंत भाव या भक्ति में एक आसक्ति भी हो, तो फिर संसार का ये सब काम सब छूट जाएगा। इसलिए कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रख सके, ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वश, जो जिस भाव से हमारा भजन करता है मैं उनके उसी भाव से भजन करता हूँ। यहाँ पर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, कैसे कृष्ण उनका प्रतिदान दे सकते हैं? गोपियां सर्वस्व छोड़ करके आई हैं, कृष्ण सर्वस्व छोड़ करके उनका भजन कर सकते हैं? ये कभी उनके लिए संभव नहीं। गोपियां मदनाथ के भाव से राधा जी कर रही हैं, कृष्ण कहां से देंगे? ये सब संभव नहीं। वो कृष्ण एक तीर्ण को भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जितने जीव हैं सभी कृष्ण के दास हैं। मुक्त महापुरुष ये देखते हैं कि सभी उनकी अनुयायी व्यतिरेक अपने सब सेवा कर रहे हैं। कंस कृष्ण का बड़ा भारी सेवक था, यदि वो नहीं आता इस लीला में, कृष्ण ब्रज की लीलाएं कभी संभव पर नहीं हो सकती थी। इसलिए नारद जी उसको महाभागवत के रूप में देखते हैं और उसके घर जाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, और वो जब गुरु कहता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वसुदेव जी भी नहीं कर सके जितना कंस ने किया। इस रास लीला इत्यादि और ब्रज में कृष्ण को भेजने के कारण कौन हुए? वसुदेव जी हुए, न कंस था। इसलिए व्यतिरिक्त रूप में जो सेवा किया महाभागवत लोग देखेंगे, साधारण आदमी कौन? सुखदेव गोस्वामी के गुरु नारद जी देखें, सुखदेव गोस्वामी पांशुल इत्यादि सब कहा, भोजकुल पांशुल कहा, माने भोजकुल का कुलांगार कहा। नारद जी ने कहा नहीं, कहा नहीं, कह सकते। इसलिए ये ऐश्वर्य रस के सेवक हैं नारद जी, कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान इनको है। ये सब भजन की चीजें हैं। यदि किसी को ऐसे भजन में रुचि हो जाए तो संसार के किसी भी सबसे अधिक जो काज उसमें उसकी रुचि कदापि हो सकती है। यदि ये कोई समझ ले जाए ये हमारे गुरुजी या वैष्णव संघ हमको ये दे रहा है, कोटि कोटि जन्मों का ऋणी बन जाएगा, जैसे कृष्ण ऋणी हो रहे हैं, किंतु हमको गुरुजी क्या दे रहे हैं, हम रूपानुग गुरु परंपरा में आए हैं, हमारे गुरुजी इसको दे रहे हैं, हम लोग अब कुछ थोड़ी सी हम लोग कुछ उपलब्धि करते हैं कि गुरुजी ने हमको क्या दिया। अब समझते हैं ये व्याकरण के द्वारा या न्याय के द्वारा या किसी भी अध्ययन के द्वारा ये सब चीजें नहीं, प्रेम नहीं मिल सकता, ये कभी संभव, ये साध्य या तो भगवत कृपा हो, आयतु की भागवतों की कृपा हो या वैष्णव की ऐसी कृपा हो जो साधन करके हम लोगों को मत करके और साध हमारे सामने रख देते हैं। दुर्भाग्य है जो हम लोग इसको ग्रहण नहीं कर पाए। ये साधन सपेक्ष नहीं है, साधन के द्वारा नहीं होगा, ये लाख जन्म में साधन करे, कोटि जन्म में यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमदान। ये